نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے خشوع اور تواضع. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو وہ صحیح معنوں میں عبادت کی لذت کو پا لے گا. لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ خشوع اور تواضع کا معنی کیا ہے. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین کے اس طبقے میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں. خشوع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں حق تعالی کی تابعداری کرنا یہ خشوع ہے اور اپنے آپ کو حق تعالی کے سپرد کرنا اور اس کے حکم پر اعتراض نہ کرنا یہ تواضع ہے. حضرت سہیل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں خشوع ہوگا شیطان اس کے قریب نہیں آئے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا دائمی خوف جو دل کے ساتھ لازم ہو چکا ہو یعنی ہمیشہ دل میں رہے وہ خشوع کہلاتا ہے. اپنے اپنے انداز میں بزرگان دین نے خشوع کی تعریف کی. خشوع کا معنی ہے ڈرنا, خشوع کا معنی خوف, خشیت الہی دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں خشوع. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر یہ دل میں پیدا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی بڑے کا خوف ہو, کسی بڑے کا ڈر ہو, تب وہ برے کام سے بچتا ہے. اور اگر کسی کا خوف نہ ہو تو بے لگام گھوڑے کی طرح اچلتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس نے اگر اپنا کام مکمل نہیں کیا تو اس کو خوف ہے کہ استاد کل پوچھے گا, ڈر ہے نا, تو اس کے ڈر سے کام کرے گا. ایک بڑا ہے, وہ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کام غلط ہے, اس کو خوف ہے کہ والد مجھ سے پوچھیں گے یا والدہ مجھ سے پوچھے گی یا پیر و مرشد مجھ سے پوچھیں گے, خوف ہے. تو خوف لازم ہے, ضروری ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے. والدین کا خوف ہو, استاد کا خوف ہو, پیر و مرشد کا خوف ہو, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر انسان کسی بھی غلط راستے کی طرف کبھی نہیں جاتا. یہی خوف اسے سیدھے راستے پر رکھتا. اور اگر خوف دل سے نکل جائے تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں, پھر وہ جائز ناجائز, حلال حرام, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, کوئی خوف ہی نہیں. کون مجھ سے پوچھے گا, مجھ سے سوال کرے گا, کوئی مجھے سزا دے گا, کوئی خوف نہیں. تو آج ہم جس خوف کی بات کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے, اسی کو کہتے ہیں خشوع. جب یہ خشوع پیدا ہو جائے گا تب وہ عبادت کی لذت کو پا لے گا. خشوع کا معنی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اسے پتہ نہ چلے کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں, سمجھ گئے؟ یعنی وہ اتنا اللہ کی عبادت میں غرق ہو جائے, مشغول ہو جائے کہ دنیا مافیا سے بے خبر, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. اکثر بزرگان دین اولیاء کاملین کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی تو گویا وہ اس دنیا سے نکل گئے, دنیا میں ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اس کا ڈر اپنے اوپر طاری کر کے اور اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے پھر وہ عبادت کر رہے ہیں. تو جب خوف پیدا ہوا شیطان دور ہو گئے. جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی اس کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا. اگر شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرے گا وہی خوف اسے شیطان سے دور کر دے گا. मसलन कोई गलत काम सामने आया, अल्लाह का डर है कि नहीं मुझे जवाब देना है, फौरन छोड़ दिया। गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, अल्लाह का डर है मुझे जवाब देना है, नहीं गया। जितने भी काम हैं इसी खौफ की वजह से उन सब से बचता चला जाएगा, सिराते मुस्तकीम पर चलता रहे। सबसे पहले खशियत इलाही अपने दिल के अंदर पैदा करें, और जब खशियत इलाही पैदा हो जाए, उसका खौफ उसका डर पैदा हो जाए, तो फिर क्या होगा, इंसान चलने में फिरने में उठने में बैठने में खाने में पीने में बोलने में हर चीज में वो अल्लाह से डरेगा। मेरी जबान से कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाए, कोई हराम लुकमा मेरे मुंह में ना चला जाए कि इसकी पकड़ अल्लाह की बारगाह में हो जाए, मेरे हाथ से किसी पर जुल्म और ज्यादती ना हो जाए कि अल्लाह की बारगाह में इसकी पकड़ ना हो जाए, किसी का हुकूक मुझसे गसब ना हो जाए कि अल्लाह की बारगाह में इसकी पकड़ ना हो। जिस तरह आप पर लोगों के हुकूक हैं, इसी तरह आपके भी लोगों पर हुकूक है। एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज, रोजा, हज, जकात, सदकात, खैरात, ये हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल इबाद, मियां का बीवी पर हक, बीवी का मियां पर हक, औलाद का वालदैन पर हक, वालदैन का औलाद पर हक। वालदैन का औलाद का वालदैन पर हक ये है कि वो उसकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, उसके खाने पीने का इंतजाम करें। और औलाद का वालदैन पर, वालदैन का औलाद पर हक ये है कि औलाद वालदैन की फर्मा बरदारी करे, उनका एहतराम करे, उनका अदब करे। हदीस शरीफ के मुताबिक इंसान इतनी ऊंची आवाज से अपने वालदैन से बात ना करे कि उसके गले की रग जो है फूल जाए। आदमी चीखता है ना तो ये रग जो है फूल जाती है। और कुरान ने कहा उफिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। हम कहते हैं ना कोई बात अगर वालदैन ने कह दी, हमें गुस्सा आया, उफ ये क्या कह दिया। कुरान कहता है उफ तक ना कहो, ये भी तुम्हें कहने की इजाजत नहीं है, इतना उनका मर्तबा है। उनका मर्तबा तो ये है कि अगर तुमने फजर के बाद मोहब्बत के साथ वालदैन के चेहरे को देख लिया तो एक हज का सवाब मिल गया, इतना मर्तबा वालदैन का। तो जिसको देखने से तुम हज का सवाब पा रहे हो उसकी हुकूमदूली कर रहे हो, फिर क्या खाक हज का सवाब मिलेगा। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह बार बार देखें, फरमाया बार बार सवाब मिलेगा, बैठे बैठे हज का सवाब कमा रहे। खुशकिस्मत है वो जिनके वालदैन जिंदा हैं और वो उनकी इताद और फरमा बरदारी करके उनके चेहरे को देख के हज का सवाब कमा रहे। इसी तरह शौहर का बीवी पे हक के उसके हुकूक का ख्याल रखें, बीवी के लिए कि वो शौहर की ताबेदारी करे, फरमा बरदारी करे, उसके तमाम कामों का ख्याल रखे। ये एक दूसरे पर अल्लाह ने हुकूक रखे और इन्हीं हुकूक की अदायगी में अल्लाह से डरना चाहिए। कोई इतना जुल्म करता है कि उसको परवाही नहीं होती, वो समझता है कि ये औरत अगर मेरे निकाह में है तो गोया मैंने इसको अपना गुलाम बना लिया, जैसा चाहा उसके साथ से लोग जुल्म, ज्यारती, मारपीट हर चीज हो रही है। ये नहीं पता कि कयामत के दिन जवाब दे होना। अल्लाह ने अगर तुम्हें उसका हाकिम बनाया है तो मजाजी तौर पर बनाया है, हकीकी मालिक अल्लाह है, हकीकी हाकिम अल्लाह है। तो अगर उस पर ज्यारती होगी तो कयामत के दिन जवाब दे होना। इसी तरह अगर बीवी शौहर की नाफरमानी कर रही है उससे भी कयामत के दिन बासपुरस हो, तूने क्यों नहीं इताअत की, क्यों नहीं फरमा बरदारी। सरकार ने फरमाया अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें, इतना बड़ा मकाम है शौहर, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। ये एक मिसाल थी हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलाम। दोस्त का दोस्त पर हक है, रिश्तेदारों का हक है, उनके साथ सिला रहमी करें, हुस्ने सलूक करें, बेहतर सलूक करें उनके साथ, ये सारे हुकूक हैं। लेकिन ये कब अदा होंगे? जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो, तब हम इस बैलेंस को बराबर रख सकते हैं। वरना अगर एक तरफ हुकूकुल्लाह अदा हो रहे हैं और हुकूकुल इबाद से बिल्कुल गफलत है, तो फिर कयामत के दिन पूछा जाएगा नमाज तो तुमने पढ़ ली, रोजा तो रख लिया, हज जकात सदकात और खैरात सब कुछ कर लिए, लेकिन क्या तुमने बीवी के हुकूक अदा किए? क्या तुमने बच्चों के हुकूक अदा किए? क्या तुमने अपने रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों, उनके हुकूक अदा किए? अगर नहीं किए तो कयामत के दिन उसका जवाब दे होना। और अल्लाह तबारक व तआला अपना हक माफ कर देता है, लेकिन बंदों के हुकूक माफ नहीं करता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे। समझ गए बात? तो हमें इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों के हुकूक हम पर हैं उससे हम सही तौर पर सुबुकदोश हो जाए। माँ बाप का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, रिश्तेदारों का, अजीजों का हक क्या है, उन सब को अपने तौर पर सही तौर पर अदा करने की कोशिश करें, बैलेंस को बराबर रखें, तब जाके ये चीज अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। तो ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब खुशु खशियत इलाही दिल के अंदर पैदा हो। अब इसकी एक मिसाल आप ये समझें, इंसान रोजी कमाने के लिए निकलता है, हलाल और हराम ये इस्लाम ने हमें बता दिया, ये चीज जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। बाद लोग क्या करते हैं, अपनी जायज कमाई को नाजायज कर देते हैं, जायज कमाई को नाजायज कर देते हैं। एक बुजुर्ग एक जगह तशरीफ ले गए, अपना घोड़ा जो था, एक गुलाम उसने कहा कि ये घोड़ा पकड़ना जरा, मैं भी मस्जिद से नमाज पढ़ के आता। वो बेचारा फटा पुराना लिबास पहना हुआ था, फकीर सा था, उसने देखा घोड़ा तो बड़ा शानदार है, इसकी जीन जो है जो उसके ऊपर डाली जाती ये भी बड़ी कीमती है, ऐसा करूं कि ये बेच दूं, कुछ दिन मेरे अच्छे गुजर जाएंगे, ये तो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। उसने क्या किया, घोड़े को तो छोड़ा, उसकी जीन उतारी और जाकर बाजार में बेच दी। अब जब वो बाहर निकले तो देखा कि घोड़ा मौजूद, गुलाम भी गायब और वो जीन भी गायब। फौरन बाजार पहुंचे तो पता चला कि वो बेच रहा था। इन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, जिसको बेचा था उससे कहा कि भाई ये मेरी जीन है, मुझे दे दो। उनका नहीं, ये तो मैंने खरीदी है, मैं तो पैसे देके दूंगा। ठीक है, मुझसे कितने की? कहा एक दिनार की। तुमने इससे कितने में ली? क्या मैंने एक दिनार में। कहा देखो, जिस वक्त मैंने इसको घोड़ा दिया था मैंने दिल में ख्याल किया था जब नमाज पढ़ के बाहर निकलूंगा तो एक दिनार इसे दे दूंगा, एक दिनार इसे दे दूंगा, बेचारा गरीब है तो ये मेरे घोड़े की हिफाजत कर रहा है, मैं इसे दे दूंगा। मैंने दिल में ये सोचा अगर ये थोड़ी देर सबर करता तो वही एक दिनार इसे मिल जाता। लेकिन इसने क्या किया, जल्दबाजी की, लालच इसके दिल में पैदा हुई, खुदा का खौफ नहीं था, लालच पैदा हुई और इसने वो जीन मेरी चुरा ली और लाकर बेच दी। वो एक दिनार तो इसको मिल गया लेकिन हराम। हराम हुआ या नहीं हुआ कि चोरी करके फिर इसने बेचा, एक दिनार इसको मिला और वही एक दिनार मैंने जो मुझे इसको देना था मैंने तुम्हें दे दिया, मेरी जीन मुझे वापस मिली। यह है इंसान की जल्दबाजी कि कभी कभी शैतान उसके दिल में ऐसा लालच पैदा करता है कि जल्दबाजी में आकर हलाल माल को हराम कर देता, हलाल रोजी को हराम कर देता। तो इस बात को अपने जहन के अंदर रखिए कि कभी भी जल्दबाजी से काम ना लें। जब रिस्क हलाल की तलाश में निकलें अपने दिल के अंदर ये सोचें कि कैसी ही परेशानी हो जाए हराम के करीब नहीं जाना। क्यों? रिज़क का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, वो कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, हम तुम्हें रिज़क दे रहे हैं, तुम्हें क्या फिक्र है, मेहनत करना तुम्हारा काम है, देना हमारा काम है, जिस जिस को पैदा किया है उसका रिज़क हमने दिया। और अल्लाह की शान तो यह है कि इंसान बाद में पहुंचता है, रिज़क पहले पहुंच जाता है। आप देख लें, इंसान बाद में पहुंचता है, रिजक पहले मुंतकिल हो जाता है, और अगर मुंतकिल ना हो तो सफर ही कैंसिल हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि जहाज में बैठे, जहाज उड़ा, पता चला घूम के फिर वापस उतर गए, क्या हुआ, परिंदा टकरा गया, जहाज में खराबी पैदा हो गई, फ्लाइट लेट, अगली फ्लाइट से आप जाएंगे। इनका अच्छा ठीक है, एयरपोर्ट पर उतार दिया, और जब उतार दिया तो पीआईए वालों ने खाना दे दिया, फ्लाइट लेट है आप खाना खा, खाना खा लिया दूसरे फ्लाइट से रवाना हो, तुम ऊपर उड़कर फिर उतर गए क्यों, खाना तो यहां मौजूद था, जा कैसे सकते थे, रिजक तो खाना था और जहां पहुंचना था वहां पहले से रिजक मौजूद है। उसकी शान तो ये है, वो कहते अगर तुम हमारे ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो तो हम उस जगह से रिजक देंगे जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहां से मुझे रिजक मिलेगा। शर्त यह है कि अल्लाह की जात पर भरोसा करो और रिस्क हलाल तलाश करने की कोशिश करो, हराम की तरफ मत जाओ। हराम के हजार रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, शैतान उसको मुजय्यन करके पेश करता है। कुरान कहते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये सारी चीजें जो है इंसान उनको मुजय्यन करके शैतान इंसान के सामने पेश कर देता है। ये चमकती हुई चीजें नजर आती हैं, मगर याद रखिए हर चमकती हुई चीज, हर चमकती हुई चीज हीरा या सोना नहीं होती, अंगारा भी चमकता है। समझ रहे हैं? अंगारा भी चमकता है, जब हाथ लगाओगे जला देगा। हर चमकती हुई चीज की तरफ मत बढ़ो, देख लो कि इसकी चमक कैसी है। अगर ये शरीयत के मुताबिक है तो हासिल कर लो, और खिलाफ है तो छोड़ दो। अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा, तो जब उसकी जात पर तवक्कुल और भरोसा इंसान करता है तो फिर वो ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता करता है कि इंसान का गुमान भी नहीं पहुंच सकता। उसकी शान ये है कि वो खाली पेट उठाता तो है, खाली पेट सुलाता नहीं। ये उसकी शान, जब उसने पैदा किया है तो रिज़्क़ का जिम्मा उसने खुद लिया है। लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं कि आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाए कि वो ही देगा, नहीं। कसब मेहनत करने का हुक्म है, तो मेहनत करो, कोशिश करो, हमारे रास्ते में कोशिश करो, मेहनत करो, तो फिर देखो जब तुम मेहनत करोगे हम अता करने के लिए तैयार। तो उसी चीज को इंसान जायज करके हासिल कर सकता है, उसी को नाजायज कर देता। जैसा कि वाकई मैंने बताया कि एक दीनार उसे मिलना था, अगर थोड़ा सा सबर करता तो वो दीनार उसे मिल जाता, लेकिन जल्दबाजी की, लालच की, उसको बेच दिया, दीनार मिल गया लेकिन हराम हराम हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब खशियत इलाही इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो अपने हर अमल में अल्लाह ताला का डर और उसका खौफ पेश नजर रखता है कि मैं जो ये खा रहा हूं ऐसा तो नहीं कि ये हराम है, मैं अगर इस रास्ते की तरफ जा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि ये गलत है, हर चीज में। और जब हर चीज में वो ये सोचेगा फिर वो मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। तकवा उसी वक्त पैदा होगा कि जब अपने हर अमल में अल्लाह का खौफ, उसका डर अपने दिल के अंदर रखे। ये है खशियत इलाही। एक नौजवान कई दिन से भूखा प्यासा, कोई लुकमा उसके मुंह में नहीं गया, एक नहर के किनारे से या दरिया के किनारे से गुजर रहा, एक सेब बहता हुआ आया, भूख है और भूख में अगर कोई चीज खाने की मिल जाए तो इंसान कितना बेचैन हो। उस भूख की शिद्दत की वजह से एकदम उठाया और उस सेब को खा लिया, सेब को खा लिया। लेकिन जब खा लिया, अब दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि सेब तो तुमने खा लिया, जिसका सेब था उससे पूछा भी या नहीं पूछा। फिर सोचा कि ये सेब कहां से आ रहा है, ये तो पानी में बहता हुआ आया। किनारे चलते रहे, देखा कि आगे सेब का एक बाग है और उसमें सेब इतने लगे हुए हैं कि वो महसूस हो रहा है कि इसी में से टूट के गिरा होगा तो बहता हुआ आया, यानी दरख झुके हुए इतने सेब लगे हुए। अब देखिए खशियत इलाही उस नौजवान के दिल में कैसी पैदा हुई। हम कितनी चीजें खा जाएं और उठा के तो दूर की बात है, छीन के खा जाते हैं, यही करते हैं ना, छीन के भी खा जाते हैं और फिर भी आराम से डकार भी नहीं लेते, खाली कोई परवाह नहीं, देखा जाएगा मरेंगे तो देखा जाएगा, कयामत होगी देखा। अभी कोई कयामत नादिल हो रही है, अभी तो खा लो अपना पेट भर, किसी का माल गसब कर लिया, किसी के हुकूक सब कुछ खा गए। लेकिन वो नौजवान इतना मुत्तकी परहेजगार है कि एक सेब खा लिया और चलते चलते जब ये देखा कि इसी बाग से टूट कर गिरा है तो इसके मालिक को तलाश करना चाहिए कि कौन है। जब उसके मालिक के पास पहुंचे तो वो भी अपने जमाने के एक जलील उल कदर बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह, जाके सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, हुजूर एक बात की मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। उन्होंने देखा पहली मुलाकात है, ये माफी मांग रहा है किस बात की। हुजूर आपका जो बाग है इसके दरख्त, इसकी टहनियां पानी में लटक रही हैं, यकीनन यहां से एक सेब टूट के गिरा होगा, और वो सेब जोता बहता हुआ किनारे तक आ गया। मैं कई दिन से भूखा था, भूख की शिद्दत थी, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे उठाया और खा लिया। अब जब सेब मैंने खा लिया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा मैं डर रहा हूं कयामत के दिन से, अल्लाह का खौफ मुझ पर तारी। आपसे सिर्फ ये अर्ज है कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने बगैर इजाजत आपके बाग का सेब खा लिया। बुजुर्ग ने देखा कि ये नौजवान कि जिसके दिल में हजारों अरमान और ये इस गुनाह पर हैरान और परेशान, ये मामूली आदमी नहीं है, ये यकीनन अल्लाह का वली है। वरना कोई बुढ़ापे में जाके इस मंजिल पे पहुंचता है कि डर पैदा हो, अरे ये तो नौजवानी में डर रहा है, और ऐसा डर के सिर्फ कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, एक सेब अगर इजाजत खा लिया तो ये अल्लाह के डर से कांप रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हमारे बाग की खिदमत करो। अच्छा, दरख्तों में पानी डालो, यहां सफाई करो। ठीक है, इन्होंने लग गए खिदमत। जब वो टाइम पूरा हुआ फिर खड़ा होगा, हुजूर माफ कर दीजिए, मैंने बगैर इजाजत सेब खा लिया। अच्छा, माफ कर देंगे लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी एक बेटी है, वो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, उससे तुम शादी कर लो, मैं माफ कर दूं। अब गौर करो, ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा जो न चल सके, न सुन सके, न बोल सके, न देख सके, बस तुम उससे निकाह कर लो। तुम अगर इस शर्त पर राजी हो मैं आज ही तुम्हें माफ कर दूं। नौजवान ने एक मिनट के लिए सोचा कि ऐसी लड़की से निकाह, लेकिन फिर खशियत इलाही जो दिल के अंदर रासिख थी, कयामत का डर और खौफ था, उसी वक्त कहा ठीक है मैं तैयार हूं। किस चीज ने तैयार किया? खशियत इलाही ने तैयार किया। चलो मैं निकाह कर लेता हूं, कम से कम माफी तो मिल जाएगी। दुनिया में अगर ये चीज मुझे मिल रही है, ये मुसीबत, ये परेशानी, आखिरत की परेशानी से तो बच जाऊंगा। राजी हो गए, निकाह हो गया। अब जब निकाह हो गया, कहा जाओ वो फना झोपड़ी जो है उसमें हमारी बेटी, चले जाओ, तुम्हारी बीवी है, निकाह हो चुका है। अब ये चले, जब अंदर गए तो देखा कि एक हसीन और जमील औरत, नौजवान लड़की बैठी, और ऐसा हुस्न के हुस्न जमाल में वो अपना सानी नहीं रखती। अब देखिए यहां भी खशियत इलाही है। बूढ़े ने, उन बुजुर्ग ने कहा कि वहां मेरी बेटी है और कोई नहीं है, और इनको पता है कि मेरा निकाह उससे हो चुका है, लेकिन जब वो सिफात जो उन्होंने बताई थी कि अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, जब उसमें नहीं देखी तो फौरन वापस पलटा। ये खशियत इलाही का आला तरीन मकाम है, तकवे का आला तरीन मकाम है जो उस नौजवान के दिल में, नौजवानी में पैदा हो चुका है। जब वापिस आए, अब बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर वहां आपकी बेटी नहीं, वहां तो कोई और बैठी है। क्यों? आपने तो कहा था वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, यानी न चल सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है। आपने तो ये सिफात उसकी बयान की थी जिससे मेरा निकाह हुआ है, और वहां जो लड़की है वो तो उसने जमान में अपना सानी नहीं रखती। वो मुस्कुराए, फरमाया घबराओ नहीं, उसी से तुम्हारा निकाह हुआ है, वही मेरी बेटी है और तुम्हारी बीवी। अब ये हैरान और परेशान कि वहां तो मामला उलट है, इन्होंने तो नकाइज बताए थे, वहां तो सिफात हसना उसके अंदर मौजूद है, इन्होंने तो सारे नक्स बताए थे कि ये खराबी है, वहां तो कोई खराबी नहीं। कहा सुनो, मैंने उसको अंधी इसलिए कहा कि आज तक उसने किसी नामहरम को नहीं देखा, मैंने उसको गूंगी इसलिए कहा कि उसने शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात जबान से नहीं निकली, कभी झूठ नहीं बोला, कोई गलत कलमा उसकी जबान पर आया ही नहीं। मैंने उसको बहरी इसलिए कहा कि कभी कोई गलत बात उसने सुनी ही नहीं। मैंने उसको लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक उसने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला। इस वजह से मैंने कहा है वही है मेरी बेटी और वही तुम्हारी बीवी। कौन था वो नौजवान? हजरत शेख अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आजम के वालिद माजी। और वो वो लड़की जिसने किसी नामहरम को नहीं देखा, जिसने कोई कभी गलत बात नहीं सुनी, जिसने कभी कोई गलत कलमा जबान से नहीं निकाला, जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, वो गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर जनाब फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो जब तकवा परहेजगारी इस मकाम पर हो कि एक सेब बगैर इजाजत खा लिया, तो उसके लिए बाग की खिदमत की और ऐसी लड़की से शादी करने पर तैयार हो गए सिर्फ खशियत इलाही, ये बाप के तकवे का हाल है। और माँ के तकवे का हाल यह है कि कभी नामहरम को नहीं देखा, कभी नामहरम की आवाज नहीं सुनी, कोई गलत बात नहीं सुनी, गलत कलमा मुंह से नहीं निकाला। जब माँ बाप इतने मुत्तकी हो तब गौसे आजम का जन्म होता, तब गौसे आजम की विलादत। जब माँ बाप इतने मुत्तकी हो तो फिर औलाद गौसुल आजम ना हो तो फिर क्या हो, तभी गौसे आजम बनते हैं और गौसियत के मकाम पर पहुंचते हैं। यह है तकवा और यह है परहेजगारी। वालिद की तरफ से हसनी, वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद, नजीब तरफैन, एक इमाम हसन का सिलसिला है, एक इमाम हुसैन का सिलसिला, और दोनों आकर मिले तो गौसे आजम बन गए। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी अल हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इतना तकवा परहेजगारी ये किस लिए, खशियत इलाही दिल के अंदर रासिख हो। वतना कितनी चीजें खा जाएं, कभी सोचा कि ये जो हम खा रहे हैं ये हलाल है या हराम है? नहीं, छीन छीन के खा जाएं, छीन छीन कर खा जाते हैं, कभी सोचते भी नहीं। अगर तकवा पैदा हो जाए तो इंसान हर अमल में ये सोचे कि मेरा ये अमल शरीयत के खिलाफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं जो कर रहा हूं कयामत के दिन इसका मुझे जवाबदेह होना पड़े। नहीं, यतीमों का माल खाते हैं, बेवाओं का माल खाते हैं, गरीबों का माल खाते हैं, हुकूक गसब करते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी ये सोचा भी नहीं कि कयामत के दिन जवाबदेह होना हो। इसलिए उस जवाबदेही से बचने के लिए इस दुनिया में अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, इस दुनिया में अपने आमाल को दुरुस्त कर लें। जब यहां दुरुस्त हो जाएंगे तो वहां की जिंदगी के सही होने का दारोमदार इस दुनिया की जिंदगी पर। अब देखते हैं ना, हम दुआ करते हैं, कुरान ने हमें दुआ बताई, रब्बना आतिना फिद दुनिया, पहले दुनिया का जिक्र किया, हसनतम वफिल आखिरति हसना, पहले आखिरत का जिक्र नहीं किया, दुनिया का जिक्र किया। रब्बना आतिना, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अता फरमा, क्या अता फरमा, फिर दुनिया हसनतम वफिल आखिरत हसनतम वकिना अज़ाबन्नार, दुनिया में और आखिरत में सुरखरुई अता फरमा दे, दुनिया और आखिरत की बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दे, वकिना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा दे। तो पहले दुनिया का जिक्र किया फिर आखिरत का, क्यों? इसलिए कि दुनिया की जिंदगी अच्छी होगी तब आखिरत की अच्छी होगी। जिसकी दुनिया अच्छी है उसकी कब्र अच्छी है, और जिसकी कब्र अच्छी है उसकी आखिरत अच्छी है। और दुनिया के अच्छे होने का मकसद ये नहीं है कि जो दुनिया में बहुत अच्छी तरह रह रहा है, किसी बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां उसके पास है, बहुत सारा कारोबार है, ये दुनिया अच्छी होने का मदार नहीं है। दुनिया अच्छी होने का मकसद ये है कि दुनिया में उसके आमाल अच्छे हों। हमारा मियार क्या है, हमारा मियार अलग है। हम ये सोचते हैं यार देखो ये नमाज नहीं पढ़ता फिर भी कितने बड़े बंगले में रह रहा है, ये देखो गलत काम कर रहा है लेकिन ये जहाजों में घूम रहा है, ये गाड़ियों में घूम रहा है, इसके घर में भी ऐसी है, इसकी गाड़ी में भी ऐसी है, इसके ऑफिस में भी ऐसी है, हर जगह ऐसी लगा हुआ, कितने आराम से है। कभी ये मत सोचिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का ये मेयार नहीं है कि दुनिया में अगर वो राहत से हो, नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, चटाई के निशान जिसमें मुबारक पर आ गए, चटाई के निशान, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाए और देखा कि जिसमें मुबारक पर चटाई के निशान हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी। सरकार की आंख खुली, उमर क्या है, क्यों रो रहे हो? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیاوی بادشاہ یہ قیصر و کسرا یہ جتنے بھی ہیں یہ تو بہترین نرم گدوں پر بہترین چادریں پر آرام کرتے ہیں، اور شہنشاہ کون و مکان کا حال یہ ہے کہ بغیر کسی چادر کے چٹائی پر آرام فرما ہے کہ اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر آ گئے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، فرمایا عمر تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو آخرت ہمارے لیے ہو، دنیا ان کے لیے ہو آخرت ہمارے لیے ہو، اللہ کو ان کو جو کچھ دینا تھا دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے، دنیا میں تو ہم مسافر ہیں، دنیا میں ہم مسافر ہیں، اور مسافر کو آرام نہیں ملتا، آرام ملتا ہے نہیں، اب سفر ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ابھی میں سفر کر کے آیا کہیں آرام نہیں ملا، صبح بھی سفر، شام بھی سفر، دن بھی سفر، رات بھی سفر، 24 گھنٹے سفر، کبھی کبھی تو 24 گھنٹے تک سونے کا موقع ہی نہیں ملا، سفر ہی سفر، آرام کا بنا اپنے گھر پہنچ گئے، آرام مل گیا۔ اسی طرح یہ تو ہمارا عارضی گھر ہے، اصل ہمارا گھر وہاں، دنیا میں آرام نہیں ہے، آرام پھر وہیں پر ہے۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی کو کسی کو دیکھ کر کہ یہ دنیا میں بڑا عیش سے ہے، آرام سے ہے، یہ سوچنا کہ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ کچھ کیا، کتنے غلط کام کر رہے، دیکھو کتنے آرام سے ہے، کبھی بھی یہ مت سوچئے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ان کو دے دی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے ہر آسائش ہر آرام موجود ہے، اور مومنوں کے لیے قیامت میں جنت میں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون، بلکہ جنت تو دور کی بات ہے، ان کی قبر کو ہی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے، وہ وہیں لیٹے لیٹے اپنے اس مقام کو اس کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، اس جنت کو دیکھتے رہتے ہیں، قبر ہی جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ یہ بغیر عمل کیے، بغیر نیک کام کیے، دیکھو کتنے آرام سے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، جتنے زیادہ پیسے والا ہے، جتنا زیادہ دولت مند ہے، اتنا ہی بے سکون ہے، اتنا ہی بے سکون ہے، یہ مت سمجھو کہ بہت بڑے بنگلے میں ہے، بہت آرام سے ہے، نرم گداز گدوں پر ہے، اتنا اس کا پیسہ ہے، اربوں خربوں روپیہ اس کے پاس ہے، جتنی زیادہ دولت اتنا زیادہ پریشان، اس کو انکم ٹیکس کا فکر ہے، اس کو سیل ٹیکس کا فکر ہے، اس کو فلاں ٹیکس کا فکر ہے، سارے فکر اسی کو ہے، فلاں بینک میں ادھر یہ ہے، ادھر کریڈٹ کارڈ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، ساری فکر موجود ہے۔ غریب جتنے آرام کی نیند سوتا ہے، امیر نہیں سوتا۔ ولیم 5 کھاتا ہے، 10 تک پہنچ جاتا ہے، کھاتے کھاتے نیند نہیں آ رہی، بے چینی بے قراری ہے، کیسی بے چینی بے قراری، اس لیے کہ حرام لقمہ جب آئے گا، حرام دولت جب آئے گی، سکون غارت ہو جائے گا، سکون چلا جائے گا، اور حلال کا ایک لقمہ آپ نے کھا لیا، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں آرام۔ تو یہ سارے بے چین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، قلبی سکون اللہ کے ذکر میں ہے، روح کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اسی سے یہ دور ہیں، تو کیسے سکون ملے گا؟ نرم گداز گدوں پر سو رہے ہیں، اے سی میں سو رہے ہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، نیند غائب ہے، نیند غائب نہیں آ رہی، اور ایک آدمی ہے بغیر اے سی کی چٹائی بچھا کے بے خبر سو رہا، اس کو کوئی اٹھائے تو اٹھانے میں بھی مسئلہ ہوتا، اٹھ ہی نہیں رہا، اتنی بے خبر نیند سو رہا، تو سکون اس کو ہے یا سکون اس کو؟ پتہ یہ چلا کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ تو بات کہاں سے چلی کہ خشوع، خشیت الہی اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی سمجھو پوری زندگی سنور جائے، پھر وہ اپنے ایک ایک عمل میں یہ سوچے گا کہ میرا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو، مجھ سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، کسی کا حق غصب نہ ہو جائے، کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے، جھوٹ بول کر میں کسی سے زیادہ پیسہ نہ حاصل کر لوں، ایسا نہ ہو جائے کہ میں ایسا کر لوں اور قیامت کے دن مجھے جواب دہ ہونا پڑے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، لیکن کب ہوں گی؟ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو، خشیت الہی، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ تو خشوع اور تواضع، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और उसके हुक्म पर एतराज न करने का नाम तवाजो है, आजजी है, इनकिसारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। जी परेशान हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहो कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस हाल में रखा, उसका करम है। अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। ये मत देखो कि वो आदमी की जिसके पास दो दो गाड़ियां उसमें घूम रहा है, बेहतरीन किस्म के खाने खा रहा है, दौलत लुटा रहा है, उसको मत देखो। उसको देखो कि जिसको एक वक्त की रोटी मैसर है तो दूसरे वक्त का पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब नीचे वाले को देखोगे आजजी पैदा होगी, तवाजो पैदा होगी, इनकिसारी पैदा होगी, अल्लाह का शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा, और ऊपर वाले को देखोगे तो हविस पैदा होगा, हिर्स पैदा होगी, इसके पास ये, मेरे पास क्यों नहीं। यही चीज इंसान को खराब करती, यही लालच इंसान को खराब करती है। अगर हम अपने आमाल में तवाजुन पैदा कर लें और खशियत इलाही अपने दिल के अंदर रासिख कर लें और शुक्र इलाही को हर वक्त अपना शेवा बना लें तो आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी, आधी से ज्यादा परेशानियां हल हो जाएंगी। तो खशियत, खुशु और तवाजो, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर ये इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाएं तो वो इबादत की लज्जत को पा लेगा, इबादत की लज्जत को पा लेगा। एक बुजुर्ग ने फरमाया, खशियत तवाजो ये है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो तो उसको पता ना हो कि दाएं और बाएं कौन है, यानी इतना उसमें खो जाए, इतना उसमें महव हो जाए और अल्लाह की इबादत में इतना गर्क हो जाए कि दुनिया से गोया वो बाहर निकल गया। और नमाज में जो सलाम है इसकी हिकमत भी यही है। आप देखते हैं जब नमाज खत्म होती है तो हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दो सलाम फेरते हैं ना, क्यों, इसकी वजह क्या है। भाई नमाज खत्म हुई, उठ के चले जाओ, एक इबादत है खत्म हो गई ना, तो उठ के चले जाओ, क्या जरूरत है कि दाएं तरफ सलाम भेजो, बाएं तरफ सलाम भेजो, मकसद क्या है, हिकमत है इसमें। हिकमत क्या है, जब इंसान किसी नई जगह जाता है सबसे पहले सलाम, सबसे पहले सलाम है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जब वापस आता है फिर सलाम, यही तरीका है ना। मुसलमानों का तरीका तो यही है, जब आप घर में दाखिल हो सबसे पहले सलाम करें, और जब घर से जा रहे हैं अपने घर में, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चले। किसी मेहमान के यहां दाखिल हुए सबसे पहले सलाम, मुसलमान का काम ही यही है, अव्वल सलाम बादल कलाम, ठीक है ना, यहाँ तो कलाम ही कलाम है, सलाम भूल ही जाते, करते ही नहीं। हुजूर ने फरमाया एक दूसरे पर सलामती भेजो, क्यों, तुम उस पर सलामती भेजोगे वो तुम पर भेजेगा, अल्लाह दोनों की दुआ कबूल कर लेगा, दोनों पर सलामती सलामती। एक बुजुर्ग थे मदीने में, हर एक को सलाम करते थे मदीने शरीफ में, जिसको देखा सलाम, जिसको देखा सलाम। लोगों ने कहा भाई इसको आप जानते नहीं, आप सलाम कर, कहा सलाम के लिए जानना जरूरी नहीं, ये तो खैर बात है, जरूरी नहीं, मुसलमान होना जरूरी है, ये नहीं कि हिंदू को सलाम कर लो, मुसलमान होना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं, आप सलाम कर ले जरूरी नहीं। उन्होंने क्या कहा, हर एक का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना अकीदा, कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, यहां पर न जाने कितने औलिया, अख्ताब, अगवाज, कितने यहां पर होंगे, कितने जाहिर हैं, कितने छुपे हुए हैं, मैं हर एक को इसलिए सलाम करता हूं कि जब मैं सलाम करूंगा यकीनन वो जवाब देगा, इसलिए कि सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो जब मैं सलाम करूंगा वो जरूर जवाब देगा। अगर वो अल्लाह का वली हुआ और उसके मुंह से मेरे लिए निकल गया वालेकुम अस्सलाम, तुम पर सलामती और रहमत हो, तो मेरे लिए तो रहमत ही रहमत, करम ही करम। तो मदीने में हर एक को सलाम करते, खैर ये मदीने के लिए नहीं, हर जगह आप कर सकते। तो बात कहां से निकली, भूल गए इतनी जल्दी, खुशू और खुजू, नहीं खुशू और खुजू नहीं, और एक और पॉइंट में बयान कर रहा था, आप भूल गए, नमाज, नमाज में सलाम क्यों फेरते हैं, ये मैं इसकी हिकमत बता रहा था। इसकी हिकमत क्या है कि जब आपने नियत बांध ली तो गोया आप दुनिया से निकल गए, अब आप दुनिया में है ही नहीं, यानी अगर सही तौर पर, खैर हम तो उस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते, ये अहलुल्लाह का मकाम है कि जब उन्होंने तकबीर तहरीमा कह कर नियत बांध ली तो मां से वह अल्लाह और उसके रसूल के हर चीज को पसे पुछ डाल दिया। अब वो दुनिया में नहीं है, अब अपने रब की बारगाह में खड़े, उसका खौफ, उसका जलाल, उसकी हैबत अपने ऊपर तारी करके और अपने गुनाहों पर नजर करके आंसुओं के साथ रोकर वो इबादत कर रहे हैं। पूरी नमाज में दुनिया में नहीं है, और जब दुनिया में आए फौरन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पहले दुनिया में नहीं, नियत बांध ली तो दुनिया से बाहर, और जब दुनिया में आए तो जब कहीं से आते तो क्या करते हैं, सलाम करते हैं, तो जैसे ही दुनिया में आए इधर भी सलाम कर लिया, उधर भी सलाम कर लिया। और एक और हिकमत है, इमाम नमाज पढ़ाए तो वो दिल में सोचे कि मेरे दाएं वालों पर भी सलाम, बाएं वालों पर भी सलाम, इधर जितने हैं उन सब पर सलाम, उधर जितने उन सब पर सलाम, सब सलामती भेज रहे हैं, और कोई अल्लाह का वली है तो पता चला पूरी नमाज पर ही सलाम ही सलाम, रहमत ही रहमत हो गई, करम ही करम हो गई। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत, तो उसका कोई अमल हिकमत और मसलहत से खाली नहीं। इसलिए आज की इस नशिस्त का उनवान जो हमने बताया, खुशु और तवादो, तो वह आपने समझ लिया कि खुशु का मतलब खशियत इलाही इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाए, वह अपने हर अमल में अल्लाह का डर और खौफ रखे। अगर वो कहीं काम कर रहा है तो सोचे कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरे मालिक को नुकसान हो जाए, या बाज दफा कोई चीज ऐसी है मालिक को नहीं पता, उसने उसमें से पैसे निकाल कर खा लिए, तो उसको सोचना चाहिए कि मालिक तो नहीं देख रहा लेकिन जो सबका मालिक है वो देख रहा है, जो सबका मालिक है वो देख रहा है। तुम अपने इस मजाजी मालिक को धोखा दे सकते हो लेकिन जो हकीकी मालिक है उसको नहीं धोखा दे सकते। तुम यहां से बचत करके सोच रहे हो कि मैंने इतना पैसा मालिक की निगाहों से मैंने बचा कर रख लिया, इतना बचा लिया, अब इतना पैसा हो गया, ये नहीं सोच रहे कि जितना बचाया है वो सब हराम हो गया है, और जब वो खाओगे और वो हराम खून बनकर तुम्हारे जिस्म में दौड़ेगा, कितनी बीमारियां पैदा करेगा, कितनी मुसीबतें पैदा करेगा, ये इंसान नहीं सोचता। हराम हलाल की तमीज नहीं, कहने ये तो कोई बात नहीं, मैंने तो एक रुपया लेकर रख लिया, मालिक को क्या पता, एक रुपया लिया है, कोई हजारों रुपए थोड़ी लिए। लेकिन गौर करो, दूध के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दी जाए तो क्या उसको पीना पसंद करोगे? दूध है, बिल्कुल साफ है, अल्लाह का नूर है, हलाल है, जायज है, एक पेशाब की बूंद उसके अंदर डाल दी, है कोई जो उसको पीने के लिए तैयार हो जाए? नहीं। यही मिसाल है, आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, आपको जो तनख्वाह मिल रही है बिल्कुल जायज है, हलाल है, हर तरीके से तैयब है, ताहिर है, पाक है, लेकिन एक रुपया मालिक की नजर से बचाकर अपनी जेब में रख लिया, पूरी रोजी को हराम कर दिया, हराम कर दिया ना। और सोच रहे हैं हमने तो इतना बचा लिया, हमने तो इतना बचा लिया, इससे मैं ये करूंगा, उससे मैं ये करूंगा, ये इंसान की भूल है। सिर्फ ये सोच लो कि तुमने इसको धोखा दे दिया, इस मालिक को जो हकीकी मालिक है, जो दिलों के अंदर छुपे हुए राजों को जानता है, उसको धोखा नहीं दे सकते। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है जो कुछ तुम कर रहे हो, जाहिर में कर रहे हो वो भी जानता है, जो छुप कर कर रहे हो वो भी जानता है। सिर्फ इतना सा ख्याल अगर इंसान के दिल में आ जाए तो फिर हलाल रोजी कमाए, हलाल लुकमा खाए, और याद रखो हलाल में जो बरकत है वो हराम में हरगिज नहीं हो सकती। सूद खाते हैं, सूद, बैंक से लोन लेते हैं, उस पर सूद चल रहा मुसलसल, और फिर परेशान है कि हम परेशान है, ये है वो है, जब गलत पैसा आता है बेबरकती उसी वक्त शुरू हो जाती है। हजारों कमा लोगे दो मिनट में खत्म हो जाएगा, और इसके हलाल उसी में रहमत है, उसी में बरकत है। अगर थोड़ा कमाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आराम और सुकून से रहोगे, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है, तजर्बा करके देख लो। इसलिए अपने आप को हर वक्त हर लम्हे हराम काम से बचाओ, हराम माल से बचाओ, हराम तरफ जाने से बचाओ, हराम तरफ देखने से बचाओ, हराम लुकमा खाने से बचाओ, और हराम बातें करने से बचाओ। इन तमाम चीजों से बचा लोगे नेक मुत्तकी परहेज़गार हो जाओ। तो ये है खुशु और यही है तवाज़ो। तो हम क्योंकि अहले तरीकत हैं, बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता हैं, वैसे तो सारे मुसलमानों पर यही लाजिम है कि वो इस तरह करें, लेकिन हम क्योंकि अहले तरीकत हैं, अहले मोहब्बत हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज को अपने जहन में रखें। آئیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما. ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.